તારીખ 3/4/1991 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું પાવાપુરીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 23
પ્રશસ્ત ક્રમને ઈચ્છનારને તે ખચિત વધારે ઉપયોગી થળ થઈ પડશે એમ માન્યતા છે. તત્વજ્ઞાનની ઊંડી ગુફાનું દર્શન કરવા જઈએ તો ત્યાં નેપથ્યમાંથી એવો ધ્વનિ નીકળશે કે તમે કોણ છો, ક્યાંથી આવ્યા છો, કેમ આવ્યા છો, કેમ આવ્યા છો, તમારી સમીપ આ સગલું શું છે, તમારી તમને પ્રતીતિ છે, તમે વિનાશી છો, અવિનાશી છો, વા કોઈ ત્રિરાશી છો, વિનાશી અવિનાશી ઇસકે સિવાય કોઈ હૈ ક્યા. એવા અનેક પ્રશ્નો હૃદયમાં ચેતનથી પ્રવેશ કરશે અને એ પ્રશ્નોથી જ્યાં આત્મા ઘેરાયો ત્યાં પછી બીજા વિચારોને બહુ જ થોડો અવકાશ રહેશે. જો આટલી જિજ્ઞાસા હોય તો બીજા વિચારોનો અવકાશ ઓછો ઘટી જશે એમ કહે છે. યદિ એ વિચારોથી જ છેવટે સિદ્ધિ છે, એ જ વિચારોના વિવેકથી જે અવ્યાબાધ સુખની ઈચ્છા છે તેની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ જ વિચારોના મનનથી અનંતકાળનું મૂંઝણ ટળવાનું છે, અનંતકાળથી આત્મા મૂંઝાય છે એમ કહે છે. તથાપિ તે સર્વને માટે નથી. વાસ્તવિક દ્રષ્ટિથી જોતા તેમને છેવટ સુધી પામનારા પાત્રોની ન્યૂનતા બહુ છે, પાત્ર જીવો બહુ ઓછા છે, કાળ ફરી ગયો છે. એ વસ્તુનો અધિરાયથી અથવા અશૌચતાથી અંત લેવા જતા ઝેર નીકળે છે અને ભાગ્યહીન અપાત્ર બંને લોકથી ભ્રષ્ટ થાય છે, આ લોકને પરલોક. એટલા માટે અમુક સંતોને અપવાદરૂપ માની બાકીનાઓને તે ક્રમમાં આવવા, તે ગુફાનું દર્શન કરવા ઘણા વખત સુધી અભ્યાસની જરૂર છે. લગભગ બધાને કોઈને વાત કરતા કદાપિ તે ગુફા દર્શનની તેની ઈચ્છા ન હોય તો પણ પોતાના આ ભાવના સુખના અર્થે પણ જન્મા તથા મુવાની વચ્ચેનો ભાગ, એટલે જીવનનો કોઈ ભાગ, જન્મ અને મરણ વચ્ચેનો કોઈ રીતે ગાળવા માટે પણ એ અભ્યાસની ખચિત જરૂર છે. એ કથન અનુભવ ગમ્ય છે, ઘણાને તે અનુભવમાં આવ્યું છે. ઘણા આર્ય પુરુષો તે માટે વિચાર કરી ગયા છે, તેઓએ તે પર અધિક અધિક મનન કર્યું છે. આત્માને શોધી તેના અપાર માર્ગમાંથી થયેલી પ્રાપ્તિના ઘણાને ભાગ્યશાળી થવાને માટે અનેક ક્રમ બાંધ્યા છે. તે મહાત્મા જયવાન હો અને કાળ નમસ્કાર હો. આપણે થોડીક વાર તત્વજ્ઞાનની ગુફાની વિસ્મરણા કરી આર્યોએ બોધેલા અનેક ક્રમ પર આવવા માટે પરાયણ છીએ. તે સમયમાં જણાવી જવું યોગ્ય છે કે પૂર્ણ આહ્લાદકર જેને માન્યું છે, પરમ સુખકર, હિતકર અને હૃદયમય જેને માનેલ છે તેમ છે, અનુભવ ગમ્ય છે, તે તો તે જ ગુફાનો નિવાસ છે અને નિરંતર તેની જિજ્ઞાસા છે. અત્યારે કાંઈ તે જિજ્ઞાસા પૂર્ણ થવાના ચિહ્ન નથી, તો પણ ક્રમે એમાં આ લેખકનો પણ જય થશે એવી તેની ખચિત શુભાકાંક્ષા છે અને તેમ અનુભવ ગમ્યો પણ છે. અત્યારથી જ જો યોગ્ય રીતે તે ક્રમની પ્રાપ્તિ હોય તો આ પત્ર લખવા જેટલી ખોટી કરવા ઈચ્છા, જેટલી ખોટી ખોટી કરવા એટલે કે વેઇટ કરવા માટે ઈચ્છા નથી. પરંતુ કાળની કઠિનતા છે, ભાગ્યની મંદતા છે, સંતોની કૃપા દૃષ્ટિગોચર નથી, સત્સંગની ખામી છે, ત્યાં કાંઈ જ એમ કરીને છોડી દીધું છે, ત્યાં બીજો કઈ ઉપાય નથી. તો પણ તે ક્રમનું બીજ અવશ્ય રોપાયું છે અને એ સુકર થયું છે. સૃષ્ટિના રાજ્યથી જે સુખ મળવા આશા નહોતી, તેમજ કોઈ પણ રીતે ગમે તેવા ઔષધથી, સાધનથી, સ્ત્રીથી, પુત્રથી, મિત્રથી કે બીજા અનેક ઉપચારથી જે અંતર શાંતિ થવાની નહોતી તે થઈ છે. નિરંતરની ભવિષ્યકાળની ભીતિ ગઈ છે. ભીતિ એટલે ભય. અને એક સાધારણ ઉપજીવનમાં પ્રવર્તતો એવો આ તમારો મિત્ર એને જ લઈને જીવે છે, નહીં તો જીવવાની ખચિત શંકા જ હતી, એમાં શું કહેવું, એ વેદના. વેદના કા પત્ર આજે આ ગયા છે 82. દુખિયા મનુષ્યનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હોય તો ખચિત તેના શિરોભાગમાં હું આવી શકું. વિકલ્પ કા વેદના ઉતના અસહ્ય થી યહાં તો દેહ છોડ જાયેગા. અહીંયા પણ એમને એમ લખ્યું છે કે તમારો મિત્ર એને લઈને જ જીવે છે, નહીંતર જીવવાની શંકા હતી, જીવી શકત જ નહીં. એમ ઉસકો મિત્ર શબ્દ કા પ્રયોગ કિયા. વિશે શું કહેવું, આ ભ્રમણા નથી, વહેમ નથી, ખચિત સત્ય છે. એ ત્રિકાળમાં એક જ પરમપ્રિય અને જીવન વસ્તુની પ્રાપ્તિ, તેનું બીજારોપણ કેમ અથવા કેવા પ્રકારથી થયું એ વ્યાખ્યાનો પ્રશ્ન અહીં નથી, પરંતુ ખચિત એ જ મને ત્રિકાળ સંમત હોય એટલું જ કહેવાનો પ્રસંગ છે. કારણ લેખ સમય બહુ ટૂંકો છે. એ પ્રિય જીવન સર્વ પામી જાય, સર્વ એને યોગ્ય હોય, સર્વને એ પ્રિય લાગે, સર્વને એમાં રુચિ થાય, એવું ભૂતકાળે બન્યું નથી, વર્તમાન કાળે બનતું નથી અને ભવિષ્યકાળે પણ બનવું અસંભવિત છે. અને એ જ કારણથી આ જગતની વિચિત્રતા ત્રિકાળ છે. પત્ર બહુ સારો છે, અપૂર્ણ મળે છે. મનુષ્ય સિવાયની પ્રાણીની બીજી જાતિ જોઈએ છીએ, તેમાં તો એ વસ્તુનો વિવેક જણાતો નથી. હવે જે મનુષ્ય રહ્યા તે સર્વ મનુષ્યમાં પણ તેમ દેખી શકશો.
પહેલા જે પત્ર લખા હે 64, થોડી શિષ્ટતા ઔપચારિકતા હૈ, હૃદય ખોલા
પોતાની વાત થોડી લખી છે.
इसमें जो प्रतीति भाव उत्पन्न हुआ है अंदर में अपने आप, इसका इसको क्या कहा जा सकता है? ये प्रथम संवत का
इसका जो पूर्व भूमिका है उसमें प्रवेश हो गया है. 22 साल की उम्र में धर्म के मैंने मोक्ष मार्ग की जो पूर्व भूमिका है, यथार्थ भूमिका है, उसमें आ चुके हैं, उस क्रम में आ चुके हैं. तो स्वतः परिणाम उन्हें लगते हैं वो चालू हो गया है. ध्येय पूर्वक जो आगे की बात है वो चालू हो गई.
इस क्रम से सब ज्ञानी
ये तो जो परिणाम का कार्य निष्पन्नता है वो तो बिल्कुल साइंटिफिक है. साइंस तो कभी बदलता नहीं, मोक्ष मार्ग क्यों नियत है, क्योंकि वो वैज्ञानिक है.
ऐसे उसकी पूर्व भूमिका भी क्यों नियत है कि वो भी वैज्ञानिक है। ना अवश्य है कि जो मोक्ष मार्ग के नजदीक आ पहुंचे हैं वो करीब एक ही योग्यता वाले हैं, जबकि इस योग्यता में आने वाले जो पूर्व भूमिका में है उसके विभिन्न योग्यता है, उतना अंतर है। अष्टक ने योग बिंदु ये नामना बे पुस्तको आ साथे आपने दृष्टि तले निकली जवाब मुकुछ योग बिंदु नु बीजु पानु शोधता मई शक्यु तो पर बाकी नो भाग समझी शकाय तेवो होवाथी ते पुस्तक मोकल्यो छे। योग दृष्टि समूचे पाछळथी मोकलीश, परम तत्व ने सामान्य बोध में उतारी देवाने हरिभद्राचार्य चमत्कारती स्तुत्य छे। योग दृष्टि समूचे हरिभद्राचार्य करती छे। कोई स्थले खंडन मंडन भाग सापेक्ष हशे ते भणे आपने दृष्टि नहीं होवाथी मने कल्याण छे मने भय नथी एम। અખંડન મિલન જેવું થાય ને, આ બરાબર નથી, આ બરાબર છે, આ બરાબર નથી, એમ એ વાત ગૌણ કરી નાખજો એમ। અથથી ઇતિ સુધી અવલોકન કરવાનો વખત મેળવ્યાથી મારા ઉપર એક કૃપા થશે। સહેલી કેવી કરી છે? જઈને મોક્ષનો અખંડ ઉપદેશને કરતું અને વાસ્તવિક તત્વમાં જેની શ્રદ્ધા છે એવું દર્શન છતાં કોઈ નાસ્તિક એવું ઉપનામથી તેનું આગળ ખંડન કરી ગયા છે તે યથાર્થ નથી થયું એ આપણે દ્રષ્ટિમાં આવી જવાનું પ્રાય બનશે। તેથી શ્રીમદજી ને આવા વિદ્વાન મળે તો બ્રેન વોશ કરી નાખે એવું છે। જૈન સંબંધી આપને કઈ પણ મારો આગ્રહ દર્શાવતો નથી, તેમ આત્મા જે રૂપે હો તે રૂપે ગમે તેથી થાવ એ સિવાય મારી બીજી મારી અંતરંગ જિજ્ઞાસા નથી। એ કઈ કારણથી કહી જઈ, એ કોઈ કારણ વસાત કહી જઈને જૈન પણ એક પવિત્ર દર્શન છે એમ કહેવાની આજ્ઞા કરી છે। આગ્રહ નથી ગમે તેથી થાય એનો મને વાંધો નથી, છતાં કહું છું કે જૈન એક પવિત્ર દર્શન છે। આગ્રહ નથી છતાંય કહું છું, તે માત્ર જે વસ્તુ જે રૂપે અનુભવમાં આવી હોય તો તે રૂપે કહેવી એમ સમજીને સર્વ સત્પુરુષો માત્ર એક જ વાટેથી તર્યા છે, જો આ સાયન્સ છે। અરે સર્વ સત્પુરુષો માત્ર એક જ વાતેથી તેર્યા છે અને તે વાત વાસ્તવિક આત્મજ્ઞાન અને તેની અનુચારીણી દેહ સ્થિતિ પર્યંત સત્ક્રિયા કે રાગ દ્વેષ અને મેહ વગેરેની દશા થવાથી તે તત્વ તેમને પ્રાપ્ત થયું હોય એમ મારું આધીન મત છે. આધીનનું આધીન જ કર્યું છે ને,
નિજી મત. હા, મેરા નિજી મત હૈ, નિજી.
આત્મા આમ લખવા જિજ્ઞાસુ થવાથી લખ્યું છે, તેમાં નિર્ણાધિકતા ક્ષમા પાત્ર છે લાગે તો એમ.
सत्पुरुष मात्र एक ही मार्ग से तरह है और वह मार्ग वास्तविक आत्मज्ञान और उसकी अनुचारणी देह स्थिति पर्यंत सक्रिय. अनुचारणी देह स्थिति पर्यंत
आत्मज्ञान के अनुचारिणी सत्क्रिया, आत्मज्ञान के अनुसरण वाली सत्क्रिया. उसका अर्थांत अर्थात करके के का क्या हिंदी किया है? या मैंने अथवा राग द्वेष और मोह बिना की दशा, वो आत्मज्ञान का अनुसार क्रिया है. બાવીસમા વર્ષે આટલો વિચક્ષણ પત્ર વ્યવહાર છે, વિચક્ષણતામાં એ 29-30 વર્ષની આત્મસિદ્ધિમાંથી એ લોકો કૂટ કાઢે છે, આત્મસિદ્ધિના પદમાંથી. 22મા વર્ષે આટલી વિચક્ષણતા છે.
ज्ञान दशा के समय के बारे में तो कोई विवाद है नहीं,
नहीं.
उसके बाद के जो भी इनका पत्र विवाद हुआ, फिर भी उसमें गड़बड़ी क्यों नजर आ लोगों का?
मतलब अपना जो अभिप्राय है उसका आग्रह, मेरा अभिप्राय से अनुकूल नहीं बात दिखती है. इतनी बात तो ऐसी होती है कि जो लिखने वाले को इसके पीछे क्या उनका आशय है, अभिप्राय है, वो बिना जाने अपना दृष्टिकोण अप्लाई करके उसी के अनुसार उसका जजमेंट देना होता है. ये मध्यस्थता को खो देने की बात है, न उसमें मध्यस्थता है न सरलता है.
ज्ञानकों को स्वीकार करते हैं और उसी समय विपरीतता की भी विद्यमानता भी लगती है, विरोधाभासी
कॉन्ट्राडिक्टरी
बातें कहते हैं.
इसका मतलब ज्ञान दशा के पहचानने में ओक संज्ञा से मान लिया है कि ज्ञानी तो है, और ज्ञानी होते हुए भी हम कुछ इससे अधिक समझते हैं अपने तो ज्ञान दशा है, फिर इतना अहम भाव हो जाता है. स्वच्छंद, इसको स्वच्छंद कह सकते हैं, हमारी नजर तो ज्यादा है. कम से कम आदमी को खड़ा रह जाना चाहिए, अगर उसको समाधान नहीं होता तो उसको खड़ा रह जाना चाहिए। ये बात अपने को समाधान नहीं होता है, उसने कोई गलती की है ये बात तो हो ही नहीं सकती, इसकी गलती वाली बात तो विचारणीय भी नहीं है, इस दिशा में विचार भी नहीं करना चाहिए, उतना हो जाना चाहिए। जब तो कह सकते कि उसके विषय में प्रतीति है, उसको विश्वास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्या है, किस हालत में लिखा है, किस परिस्थिति में लिखा है, किस आशय से लिखा है, वो एक बात संशोधन की हो सकती है, तो उसको रख दे रिजल्ट।
साथ में अनुसंधान करके देखो, अर्थ भावनगर में जिन्हें भगवान बना देता है,
ये सर थोड़ी बात विनय ने वजन आपवा माटे ने पण छे कि वो मार्ग विनय तणो समझे कोई सौभाग्य, ऐसा करते हुए बात लिया है। तो उसमें वो ये कहना है कि इसमें कोई मेरा आशय गंभीर है, सामान्य जैसा शब्द लिखा है उतनी बात नहीं कहनी है। विनय तणो भाख्यो श्री वितराग, मूल हेतु ये मार्ग न, उसका जो मूल हेतु है इसको ही गंभीर हेतु के कारण से कोई सौभाग्य है वो उस हेतु पर समझेगा।
तो विनय मोक्ष का द्वार है, ये तो शास्त्र वचन है, तो विनय मोक्ष का द्वार है, इसकी गंभीरता
द्वार है, और वो भी कितने हद तक इस प्रकार का विनय है, उसका मूल हेतु क्या है, इसके पीछे मूल हेतु क्या है,
तो यहाँ तो दर्शाना विनय के महत्व को है।
तो नहीं तो वो शब्द समझ करके कोई उसका गैर लाभ लेगा, असदगुरु ये विनय नो लाभ लहे जो काय, महा मोहनीय कर्म थी बूढ़े भगजल माही को, ऐसा ले लिया। होय मुमुक्षु जीवते समझे ये विचार, होय मतार्थी जीवते अवड़ो ले निर्धार, अगर कोई विपरीत निर्धार करेगा तो ये मतार्थी होगा, सो करेगा, मुमुक्षु तो ऐसा नहीं करेगा, वहां तक तो लिख दिया है।
यानी विनय के असदगुरु अगर वो जो विनय की बात को मुख्यता करके अपना मान पूजा अगर सत्कार कराएगा
वो तो
वो नुकसान कर देगा उसने,
तो डूबेगा।
वैसे ही मोक्ष इस बात में उसमें तो असदगुरु के बारे में आया ना,
वो तो असदगुरु लेके मैंने वो जिसका भी कोई गैर लाभ लेने वाला उसके लिए वो बात नहीं, क्योंकि विनय बहुत स्थापित कर दिया है, लेकिन जो मुमुक्ष होगा वो उसका विचार समझ सकेगा, मतार्थी होगा तो विपरीत निर्धार करेगा इसका,
इस विनय के मार्ग का।
हाँ, जो विनय मार्ग का विपरीत निर्धार करता है वो मतार्थ के कारण से करता है।
इसका स्पष्टीकरण क्या उदाहरण समझ लो, किस टाइप से
उदाहरण, मैंने उसका जो विनय का वो स्थापित करने का जो अभिप्राय है वो अभिप्राय को नहीं समझ करके वो मतार्थ में ले जाएगा, ऐसा सितंबर में तो ये दसवीं कालिक में स्थापित है, तो मतार्थ से दृष्टिकोण उसको न तो श्वेतांबर को विचार करना है न अन्य को विचार करना है, ये दो ही बात वहां से निकलती है। मतार्थ को तुम छोड़ देना है, हमने विनय की स्थापना कर दी है कोई अधिक शब्दों में तो उसका कोई अपनी राशि है।
ये बात तो हमें खुद ही
खोला, गुरु का महत्व कितना इसकी गंभीरता।
गुरु गया छद्मस्त्र पर विनय करे भगवान, तो गुरु छद्मस्त्र रह गए, लेकिन गुरु का जो विनय करने वाला जो शिष्य है उस विनय के फल में उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर दिया।
मतलब जो मूल आशय है वो तो गुरु का महत्व दर्शाने का है।
तो यहाँ जो ये अर्थ लेते हैं कि भगवान विनय करते हैं, ये बात तो फिर इस दाता से नहीं बैठती है। अर्थ भी जो मदन भाई के अर्थ को ये लोग समय रखे हैं।
बाला भाई ने तो क्या गलती किया कि भैया बच्चे क्या वो केवल ही भगवान छद्मस्त ऐसे अपने सदगुरु की भैया बच कर लेता है,
ये गठन गलती हो गया,
ये गलत हो गया है। और लोग मानते हैं कि ये श्रीमद जी का अर्थ गलत
है, मिलता भी नहीं कहीं, ये तो कहीं मिलता नहीं, फुटनोट में उन्होंने दिया, कृपाल देव ने देख लिया, कृपाल देव ने तो खाली पहुँच नहीं किए, पहुँच नहीं किए इसके ऊपर। तो इस टाइप से अगर अर्थ घटन होता है तो विनय का महत्व क्या है, विनय मार्ग क्या है, विनय का स्वरूप क्या है, और विनय से
विनय की हद कितनी होनी चाहिए,
विनय का फल क्या है,
उसका फल क्या है,
बात इतनी दर्शन विनय आश्रम में गलती कहाँ की इस बात में
कोई बात सवाल ही नहीं। ये तो जो विपरीत निर्धार करेगा वो मतार्थ होगा हो ही करेगा, तो कह दिया विपरीत निर्धार करेगा तो ये मतार्थ के कारण ही करेगा, दूसरा कोई कारण
वो साफ बात है।
अगर विपरीत अर्थ कर सकता है कोई, ये बात उनको ध्यान में था, इसलिए ये तीन चार
यही कारण है कि दशमी का लेख में वो स्पष्ट आता है। ये जो भैयावच वाली बात अम्बालाल भाई ने लिखी है वो बात जिस प्रकार में है ये सुतामर का पसंद किया है उसमें वो बात है। इसलिए ऐसा कोई मतार्थ के कारण से अर्थ घटन करेगा तो ये विपरीत हो जाएगा, तो करना ही नहीं है, उसने निषेध कर दिया है नीचे जाकर। मेरा ये कहने से वो अर्थ नहीं घट, अर्थ घटन नहीं करना, सब मना तो कर दी है।
जो दस तारीख में जो अर्थ घटन किया वो बराबर नहीं है,
वो बराबर नहीं है, वो
बात स्पष्ट आता है,
सब बात निकलती
है, शब्दों का अर्थ भी सीधा बैठता है। विनय करे भगवान, विनय का स्वरूप बता दिया, विनय का फल बता दिया, ये जरा बराबर बैठता है।
बात से मतार्थी का लक्षण को निकाले यहाँ से लेके
चल रहा है
19 नंबर नहीं आता था,
एक दो तीन चार चार और
ना ऊपर भी जितना गाथा लगा
18 नंबर में
18 माय पूछ है माना अधिक शत्रु महा निज छंदे नमराय जाता सद्गुरु शरण मा अल्प प्रयास चले। देखो सद्गुरु के विषय में वो तीन गाथा पहले लिखी है, प्रत्यक्ष गुरु योग स्वच्छंद के रोकाय अन्य उपाय किरात की प्राय बहुत है, स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सदगुरु लक्ष्य संकित तैने भाग्यों कारण बने पीते, वो एक नंबर का संकित। मानादिक शत्रु महानिज छंदे न मराए, जाता सदगुरु शरण मा अल्प प्रयास है। ये सदगुरु की स्थापना करके उसका एक्सट्रीम पॉइंट ले लिया है, भगवान पद मिलने वाला है इसे, तो ऐसा वितराग ने ये मार्ग ऐसा कहा है, वितराग का साक्षी।
गुरुदेव का अभिप्राय कंफ्यूजिंग शब्दों में आता था, जैसे लोगों को
गुरुदेव को भी बोले हैं।
मैंने भी सुना था
गुरुदेव इसलिए बोले थे कि उनका खुद का अभिप्राय में वो बात थी कि श्वेतांबर और दिगंबर के जो मत के विषय में है वो खुला बोलते थे, उनका खुद का अभिप्राय था कि ऐसी बातों को खुली कर देनी चाहिए थी, जबकि श्रीमद जी ने ऐसा सोचा है कि मुमुक्षुओं को इस विषय में नहीं ले जाना चाहिए। ये बात जो है बहुत सूक्ष्म न्याय की है, इतना इसका अगर इस पर विचार करते हैं तो बहुत सूक्ष्म बात है कि अगर इस श्वेतांबर दिगंबर दो मत को स्पष्ट करने से संप्रदाय बुद्धि हो जाती है या मत का मंडन खंडन वाला अभिप्राय हो जाता है तो मुमुक्षु को जो जिस भूमिका में आत्मकल्याण का विषय हस्तगत करना है उसमें एक प्रतिबंधक कारण बाधक कारण खड़ा हो जाता है। तो उसी दृष्टिकोण से उस एंगल से श्रीमद जी ने ऐसा सोचा है कि मुमुक्षुओं को वो बात रिजर्व उस विषय में रिजर्व रख करके अभी इसको जो जरूरत है वो बात उनको दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पर्टिकुलरली जो भी मुमुक्षु की भूमिका है उस भूमिका का गहरा अभ्यास करके इस विषय में ये विवेक रखा है। ये भूल नहीं हुई है किंतु ये बहुत सुंदर विवेक किया है। अब गुरुदेव को क्या था कि कोई पर्टिकुलर एक एक आदमी से कोई निर्देश देने की परिस्थिति नहीं थी, तो उनका जो प्रभावना योग था उसमें समष्टिगत परिस्थिति थी, तो सामने सैकड़ों आदमी या हजारों आदमी बैठे हों, उपदेश में तो जो उपदेश हो सबको तो लागू होने वाला, परिस्थिति ये है कि जो उपदेश निकलता है वो सबको लागू होने वाला है ही नहीं, एक उपदेश सभी को तो लागू हो ही नहीं सकता। तो इस परिस्थिति में इस श्रीमद जी के अनुयायी लोग मानते हैं इस प्रकार से उपदेश नहीं देना चाहिए था, लेकिन जिसका जैसा उदय हो वैसा ही बने, तो उसमें ये बाबू जी का जो विचार है वो ये ध्यान में आता है, जो पात्र है वो ठिकाने आते हैं बस, ऐसी परिस्थिति में दूसरा कोई इलाज नहीं के हजारों आदमी को एक एक का परिचय करके वो इसकी कैसी योग्यता है उसको देख करके फिर उसी अनुपात में उसके साथ बात करें, ये संभव पॉसिबल नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि अपने तो अपना स्वाध्याय करना है, वो जो पात्र है वो ठिकाने आ जाएंगे, वैसे ही गत्ता शक्कर खाता है तो मरता है, शक्कर खाने से थोड़ा मरता है, गत्ता है इसलिए मरता है। तो रखकर ये बात उनको तो क्या है कि श्वेतांबर दिगंबर में वो तो ग्रेट विख्यात है श्वेतांबर वाला, तो उसमें से तो निकाल देना चाहिए ऐसा अभिप्राय रख करके खुद ने जाहिर परिवर्तन कर लिया, तो ये बात जाहिर में रख दी। इससे नुकसान भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है, दोनों बात बन सकती है, जैसे जिसकी पात्रता जैसे जिसकी योग्यता। अब श्रीमद के आश्रम में अगर ये चर्चा निकालो तो अगला वही बोलेगा हमको मंडन खंडन में साथ नहीं जाना है, ये चर्चा हमको करनी ही नहीं है, यहाँ से इस बात को बंद करेगा। सितंबर दिगंबर वाली बात निकाली तो यहाँ से वो काटेगा, हमको मंडन खंडन में नहीं जाना है। हम आगास गए थे तो बात चली थी, मंचन का था पहले मंडन खंडन में बन जाओ, लेकिन यथार्थता क्या लगती है मंडन खंडन में बन जाएंगे, लेकिन क्या ये मूर्ति यथार्थ दिखती है मित्रता की, तो जो आभूषण से श्रृंगार से रखी गई है मित्रता के साथ कोई सुसंगता दिखती है क्या, उतना ही मेरा प्रश्न। वो बात आपकी सही है, इसको स्वीकार करता है, करना पड़ता है न्याय के तौर से, तो स्वीकार ही करना पड़ता है।
इस गाथा के लिए गुरुदेव का कहना है गड़बड़ी है, गड़बड़ी है श्रीमद मूर्ति
के लिए वो बोलने का से उनका अभिप्राय में उपशोषण का दोष था, वो चर्चा चली भी थी कि साहब गड़बड़ी होए तो फिर ज्ञान दशा का क्या है, तो क्या नहीं ये तो उपशोषण का दोष है ऐसा बोला था, तो वो तो बात पकड़े नहीं, और जैसा गुरुदेव बोले वैसा हम भी बोलने लगे, तो ये बात तो अनधिकार की बात हो गई। गुरुदेव को कुछ अंश में अधिकार भी है, समझो अगर कोई क्षोभ के दोष वाली बात का टिप्पणी कर दिया तो उतने दोष में वो नहीं आएंगे, क्योंकि उसका ज्ञान श्रद्धा बदलने वाला नहीं है, दूसरे को क्या होगा वो तो मर जाएगा। अब क्या है कि ये जो त्रिविध दृष्टि प्रकाश में और चारों योग पर संक्षेप में जो है वो प्रेमचंद जी का शायद लिखा हुआ है, प्रेमचंद जी का कितना ग्रेस्पिंग वो अलग बात है, लेकिन उसमें जो लिखा हमको लगा उसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है रख रख दे रहे हैं। तो वो करुणानुयोग के विषय में ऐसा लिखा है कि राग और राग के फल, वैसे ऐसा कोई बात लिखा है, तो उस पर गुरुदेव ने बोल दिया ये भूल है ऐसा करके बोला। तो इस वक्त जो सेकंड एडिशन हुआ तो वो के जी मेरे पास आए, आपने वो रखा के निकाल दिया चार अनुयोग वाला है, चार अनुयोग संक्षेप में ऐसा कर, संक्षेप में तो ब्रैकेट में लिया है क्या, तो बहुत संक्षेप में एक एक दो तो तीन तीन शब्द में तो एक एक अनुयोग का टोटल मार दिया है, तो संक्षेप तो कितना कर दिया, करुणानुयोग विकार और विकार के फल। गुरुदेव ने बोला कि भूल है, विकार और विकार के फल तो नहीं है, उसमें बहुत सी बातें हैं, चौदह ब्रह्मांड इसमें आ जाते हैं, चौदह गुण स्थान भी इसमें आ जाते हैं, चौदह मार्गना स्थान भी इसमें आ जाते हैं, चौदह जीव स्थान भी आ जाते हैं, बहुत सी बातें हैं। करुणानुयोग में चौदह ब्रह्मांड का वर्णन करुणानुयोग में है, ऐसा करके बोले तो कैसे चौड़ जाते हैं अपने मुख से, आपने निकाला कर रखा है मैं तो रखा है, लेकिन जब गुरुदेव ने ऐसा बोला है तो आपको निकाल देना चाहिए था, एडवाइस दे देते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये बात उनका तो क्या एक ही दृष्टिकोण था, अध्यात्म दृष्टिकोण से वो सभी बातों को कहते थे। कोई भी विषय की जो परिभाषा है वो कुछ एक एंगल से होती है, उसी विषय की बहुत सी परिभाषा मिलेगी। ऐसे सत द्रव्य लक्षण और गुण समुदाय द्रव्यम, द्रव्य की परिभाषा दो तरफ से, एक गुण के एंगल से मिलती है, एक अस्तित्व के एंगल से मिलती है। तो एक परिभाषा झूठी है और एक सच्ची है, उसे कह नहीं सकते। मैंने किसी एक एंगल से अगर ये परिभाषा है उतना ही उसमें रखे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गुरुदेव ने बोल दिया तो बस ऐसा हो गया। गुरुदेव ने कहा तो क्या है कि उनको तो विचार ही विस्तार करने का रहता था, वो एक एक शब्द का वो विस्तार करते थे, और इनका तो कहने का पद्धति संक्षेप वाली थी, विस्तार करने की पद्धति नहीं, विस्तार में जाते ही नहीं, और विस्तार में जाते विकल्प बढ़ते हैं तो अनुकूल नहीं पड़ते हैं। तो ये भूल वाली बात मेरे लिए, लेकिन मेरे से भी आगे मोक्ष में जाने वाले वो बात छूट जाएगी। खुद को तो उनको तो भी नहीं रहता है, गुरुदेव को तो जो है ज्ञान उसका तो नहीं बदलता है, भूल कहते वक्त पे वो लिमिटेड बात करते हैं, उसका तो अनलिमिटेड अपराध हो जाएगा।
तो विस्तार नहीं, ये भूल रखी है, जो लिखा हो तो भूल
नहीं, नहीं भूले, लेकिन बात रह गई है इसे तो रह गई है, उसको भूल बोल दिया, शब्द को पकड़ेंगे अनर्थ का अनर्थ के रूप में।
और इसको अगर चारों ने उनको अगर वहां पर
संक्षेप बोले जब मैं था तब गुरुदेव बोले तो मेरी उपस्थिति में वो बात चली थी, विकार और विकार के भूल है उसको तो 14 ब्रह्मांड की बातें हैं। तो मतलब ये संक्षेप में तो मैंने ग्राउंड में तो मैंने भरा भरा है संक्षेप में, और कौन से दूसरा लगे तो अध्यात्म दृष्टि से परिभाषा
तो
अध्यात्म दृष्टि में क्या है, विकार और विकार दो ही विषय को मुख्य करते हैं। तीसरी तीसरी जानने की बातें जो है, 14 ब्रह्मांड का स्वर्ग कितने नर्क कितने हैं, फिर भी वो विकार के फल में तो आ ही जाते हैं, फिर विकार के फल को लंबा भी तो ये भोग्य स्थान है, 14 ब्रह्मांड है परिणाम के, विकार के भोग्य स्थान तो 14 ब्रह्मांड है, पाप को भूल गया, पुण्य पुण्य को भोगने का स्थान है, तो भी आ जाता है इसमें, नहीं आता है उतनी बात नहीं, लेकिन उसमें बोला था वो 14 ब्रह्मांड भी इसमें है, ऐसे 14 गुणस्थान भी इसमें है, ये करणानंद रूप में इसका समावेश होता है, ऐसे वो बात चली थी
आध्यात्मिक परिभाषा संक्षेप में इतना, और इसमें
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये संक्षेप में लिखा है, फिर कोई दोष नहीं आता है। क्या है तो बहुत लोग तो गुरुदेव की नकल करते हैं, लेकिन गुरुदेव को जहां जितना बोलने का अधिकार है वो समूह को नहीं मिलता।
इस एडिशन के अंदर ये सब बात है, इस एडिशन में आपके सब बात है, जो रिप्रिंट होना है उसमें ये सब ले रहे संक्षिप्त आध्यात्मिक परिभाषा,
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संक्षिप्त
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से।
संक्षिप्त आध्यात्मिक दृष्टिकोण
से चार अणु की व्याख्या तो लिखा है
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संक्षेप में,
संक्षेप में
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कॉमा कर दो, संक्षेप संक्षिप्त आध्यात्मिक दृष्टिकोण एकदम मीनिंग अलग है।
नहीं वो नहीं, वो तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संक्षेप में चार अणु
Thank you. प्रमाणे ने एक दफे छाप दिया था वो अनेकांत में, क्योंकि गुरु समुदायो द्रव्यम बात जुटी है। ये ऐसा लोग कहते हैं वो सही नहीं है, ऐसा है वैसा है, टिप्पणी करनी नहीं थी। ये तो इनका तो शिष्य हिम्मत भाई का मैंने हिम्मत पैसे मिला था मैं मैंने कि आदमी लिखता है क्या गड़बड़ी करता है कि वो समुदाय द्रव्यम पंचायत जाए बनाता है। और ये बात की ये चित विलास में दीपचंद जी ने, आप तो जानते हो याद में कैसे टिप्पणी करता है, तो कहा है कहीं ठिकाना होना ठीक है।
पंडित जी ने आपको ये कराया है, वासुदेव भाई खुद प्रत्यक्ष सुनने वाले हैं कि गुरु गोपालदास जी भाई की भूल है, ऐसा पंडित जी ने कहा है।
नहीं पर गुरु गोपालदास की भूल है लेकिन पंचाजयी का भूल है क्या?
दिया तो उन्होंने धन तो पंचाजय से ही लिया होगा, गुरु गोपालदास जी भाई की भूल है ऐसा वासुदेव भाई धमाने खुद ने सुना पंडित जी के मुख से,
झपट में नहीं आ जाए, और वो तो एक जगह झपट में आ गए तो उसकी तो मौत हो जाए। चर्चा नहीं करते हैं और अपन तो उनको पकड़ने के लिए चर्चा भी नहीं करते हैं। अगर इसको पकड़ने के लिए चर्चा करें तो हम दूसरी स्टाइल से रख देते हैं कि आदमी लिखता है सही लिखता है, आप क्या आपका क्या अभिप्राय करके उसके पेट निकाल लेते हैं, अपना ऐसा विचार नहीं था तो सीधा ही बता दिया कि ये तो पंचाध्याय माता है कैसे लिखता है, तो वहाँ भर दिया कि जब पंचाध्याय माता है तो पंचाध्याय तो कितना विशेष है कि जो आप आज आज की तारीख में वो खुद का समझने का कोई गुंजाइश नहीं है, वो देखने कुछ बात नहीं है, आज भी नहीं समझता, स्वीकार करता है पंचायत है कि बहुत सी बातें ऐसे मैं आज नहीं समझता उसको, तो उसे दादर नहीं तो ऐसा हुआ था। शाम को उनके वहाँ चर्चा चल रही थी, कुछ काम के हिसाब से जाना हुआ तो सब बैठे थे, चर्चा बंद हो गई। चलाओ चर्चा आ जाए, हमको भी आप लोगों के सत्संग का लाभ मिलेगा, चर्चा चालू रखो। नहीं चालू हुआ, कुछ मिनटों तक सब मौन रह गए, फिर रास्ते से मुझे पूछ लिया फिर कोई काम है क्या कैसा आना हुआ। मैंने कहा वो तो बाद में करेंगे बात, आप पहले तो चर्चा तो जहाँ तक अपना पीरियड है वहाँ तो चलाओ, तो नहीं चले चली नहीं अपने सामने चर्चा ही नहीं करते। आत्मसिद्धि में तीन प्रकार के संकेत बताए हैं, निश्चय परमार्थ संकेत तो एक ही प्रकार का होता है लेकिन पहला दूसरा का कारण और दूसरा तीसरा का कारण ऐसा कार्य कारण में कार्य का उपचार करके तीनों को संकेत कहते हैं। तो ये तीन प्रकार का संकेत इसमें लिखा है, वो बात उसने नहीं खोली हो तो कौन जानते हैं। तीन प्रकार का संकेत मेरे ऊपर कर दी।
आज भी इतना पढ़ने के बाद भी कौन सीधा था मैं से वो संकेत पूरा आर्टिकल था वो कहाँ बैठता है। दूसरा वाला संकेत का तो कोई सीधा बैठता है, दूसरा संकेत का तो लक्षण ही किसी कौन सीधा था मैं
भाषण में से बैठता
है। आपने तो आपने बताया तब ख्याल जाता है भाई यहाँ संकेत
निज स्वरूप और बोध बीज की प्राप्ति, भाव भाषा उसको बोध बीज कहते हैं। मीटिंग भी वो लिया है शिष्य को बोध बीज की प्राप्ति का कथन। सदगुरु ना उपदेश थे आयु अपूर्व भान, निज पद निज माही लें दूर थी वो अज्ञान। भाष्यो निज स्वरूप थे शुद्ध चेतनारूप, भाष्य भाव भाषा अजर अमर अविनाश ने देहातीत स्वरूप एक पद में बैठ जाए बस।
पीछे बात आई
हाँ तीसरा 111 में है।
तीसरा 111 में कैसे इसका
पद नहीं अंदर तो क्रम नो सचवाए समतारमता उग्रता ज्ञायुक्ता सुखवास वेदकता चैतन्य वैधता ये सब जीव विनाश। श्री तीर्थंकर एम कहे छे कि आ जगत में आ जीव नामना पदार्थ ने गमे ते प्रकारे कहो होय भिन्न भिन्न विभिन्न मत वाला है ते प्रकार तेनी स्थिति में हो તેને વિશે અમારું ઉદાસીન પણ છે. બીજા શું કહે છે અમારે સમજ નથી. જે પ્રકારે નિરાબાધપણે તે જીવ નામનો પદાર્થ અમે જાણ્યો છે તે પ્રકારે કરીને તે પ્રગટ અમે કયો છે, જે લક્ષણે કયો છે તે સર્વ પ્રકારના બાધે કરીને રહીત એવો કયો છે, લક્ષણમાં બાધા આવતી નથી. અમે તે આત્મા એવો જાણ્યો છે, જોયો છે, સ્પષ્ટ અનુભવ્યો છે. પ્રગટ તે જ આત્મા છીએ, અમે પ્રગટપણે તે આત્મા જ છીએ. તે આત્મા સમતા નામના લક્ષણે યુક્ત છે. અહીંયા સમતાને ધ્રુવપૂર્ણ કીધું છે. સમતા મેને વિષમતા કે સામને સમતાવાદી વાત નહીં હૈ. રાગ દ્વેષ વિષમ વિભાવ હૈ, પર સમતા સ્વભાવ હૈ. વિતરાગતા વિતરાગતા કે અર્થ મેં નહીં દીયા હૈ સમતા. સબ મેને એક સરખા સદ્રશ 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 ભાવે રહેના, ઉસકો સમ કહેતે હૈ. વર્તમાન સમયે જે અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક ચૈતન્ય સ્થિતિ તે આત્માની છે. વર્તમાન સમયે જે અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક ચૈતન્ય સ્થિતિ તે આત્માની છે. તે પહેલા એક બે ત્રણ ચાર દસ સંખ્યાત અસંખ્યાત અને અનંત સમયે હતી, ભૂતકાળમાં વર્તમાનમાં છે, હવે પછીના કાળને વિશે પણ એ જ પ્રકારે તેની સ્થિતિ છે. કોઈ પણ કાળે તેનું અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મકપણું ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ, ચૈતન્યપણું ગુણની સ્વભાવની અપેક્ષાએ, અરૂપીપણું એ આદિ સમસ્ત સ્વભાવ, સમસ્ત આવા જે સ્વભાવ છે તે ધ્રુવ છે એમ, ધ્રુવ સ્વભાવ તે છૂટવા ઘટતા નથી, ધ્રુવ જ રહે છે, મળતા નથી, છૂટતા નથી. એવું જે સંપણું એટલે ધ્રુવપણું એને સમતા કહે છે. તે જેનામાં લક્ષણ છે તે જીવ છે. પહેલે ધ્રુવની પરિભાષા સમતા માટે ધ્રુવ કાઢ્યું છે.
ઉન્હોને
તો પદ્ય લિખા હૈ, અર્થ તો દૂસરો ને લિખા હૈ.
બનારસી દાસ જી ઇસી આશય સે લિખે લક્ષણ કો, બનારસી દાસ જી પદ તો ઇસી આશય સે લિખે જો કૃપાલુ લક્ષણ બતાયે વહાં પર.
નિરાબાદ લક્ષણ, નિરાબાદ લક્ષણ દિયા હૈ. લક્ષણ મેને ક્યા હૈ? એ શબ્દ જીવ વિલાસ, જીવ કા યે ઐસા લક્ષણ
હૈ. હા, યે જીવ કા ઐશ્વર્ય.
હા, જીવ કા ઐશ્વર્ય. તો સામ્ય ભાવ જો હૈ વો તો મોક્ષ માર્ગ કે પ્રારંભ સે લેકર ગયા, ઇસકે પહેલે તો હૈ. લક્ષણ સે તો બાધા પહોંચતી હૈ. કન્ડિશન તક કે નિરાબાધ જીવ કે લક્ષણ હૈ તો કિસ હાલત મેં ભી બાધા નહીં પાતે, તીનો કાળ મેં રહેતે હૈ, એસી બાત હૈ. પશુ પક્ષી મનુષ્ય આદિ દેહને વિશે, વૃક્ષ આદિને વિશે જે કઈ રમણીયપણું જણાય છે અથવા જેના વડે તે સર્વ પ્રગટ સ્ફૂર્તિ વાળા જણાય છે, પ્રગટ સુંદરપણા સમેત લાગે છે, તે રમતા રમણીયપણું છે લક્ષણ જેનું, તે જીવ નામનો પદાર્થ છે. રમતા મેને રમ્યતા, રમ્યતા મેને સુંદરતા. જેના વિદ્યમાનપણા વિના આખું જગત શૂન્યવત સંભવે છે, ખાલી ખાલી એવું રમ્યપણું જેને વિશે છે, તે જેની સત્તાને વિશે છે, તે લક્ષણ જેને વિશે ઘટે તે જીવ છે. જીવ નિકલ ગયા સુંદરતા ગઈ, ભલે એ મનુષ્ય શરીર હો યા વૃક્ષ રૂપ શરીર હો, જીવ નહીં હૈ તો ઉસકે રમ્યતા નહીં. રમ્યતા દીખતી હૈ પુદ્ગલ પરિણામ કે માધ્યમ સે, ફિર ભી વો પુદ્ગલ કે પરિણામ નહીં, જીવ કે પરિણામ હૈ. કિસકો લિખાઈ નહીં મિલતા, 436 से लेकर ये विषय चलता है, 436 में વાળા તો હિન્દી